हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 11। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहकणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सूति देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। अध्याय 12 श्लोक नंबर 11। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, अथै तदप्य शब्दोसी कर्तुं मद् योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवा। अथै तदप्यशतोऽसि कर्तुं मद् योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवा। अथै तदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद् योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवा। शब्दार्थ अथै तदप अशक्तोसि, अथै मतलब यद्यपि, एतद यह अपि भी अशक्त समर्थ असमर्थ, असि हो कर्तुम इन्हें करने में, तो मत योगमाश्रिता मेरे प्रति योगम यानी भक्ति में आश्रिता यानी निर्भर, तो फिर क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म यानी समस्त कर्मों के फलमंद फल फल त्यागम मतलब त्याग, और ततः कुरु यत आत्मवान, ततः मन तब, कुरु यानी करो, यत आत्मवान यानी आत्मा स्थिति। इस तरह से आपको मतलब आत्मा में स्थित होने का प्रयत्न करो। किस तरह से, अनुवाद, किंतु यदि तुम मेरे इस कृष्ण भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। फिर से देखिए, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्मों के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे, हम सब ध्यान से श्रील प्रभुपाद जी के इस तात्पर्य को समझने का प्रयास करेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में असक्षम हो। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियां वैदिक नियम में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलाप में रुचि ना रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाड़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है और इस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करें। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता में 18.46 में कहा गया है, यत्तः प्रवृत्ति भूतानां, अर्थात यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, यानी कोई अगर सेक्रीफाई करना चाहता है, तो भले ही वह यह ना जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मोकं कुरु तु भाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवद्गीता अध्याय 12, जिसका नाम है भक्ति योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर रीति से भक्ति योग की विभिन्न स्तर बता रहे हैं। विभिन्न स्तर मतलब आप किस स्टेज पर हो और उस स्टेज पर रहकर आप कैसे भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हो। तो सबसे पहले तो भगवान ने बताया, देखो अर्जुन, अगर आपको मेरी संपूर्ण सहायता चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासत। अनन्य यानी और कोई नहीं, बस अकेला मेरा ही हृदय में ध्यायन्ते, हृदय में केवल मेरा ही ध्यान होना चाहिए, बस और किसी का नहीं। जैसे एक पति की इच्छा होती है कि मेरी पत्नी केवल मुझसे प्रेम करे, उसी तरह भगवान भी हमारे पति हैं और भगवान चाहते हैं कि जीव समस्त जीव आत्माओं के हृदय में केवल मेरा वास होना चाहिए। तो ये भगवान का अधिकार है। भगवान इसलिए बार बार कहते हैं अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करो, मेरे विषय में सोचो। और इस तरह से अगर आप सदैव अपने समस्त कर्म मुझे अर्पण करोगे, मुझे अपने जीवन का गोल बनाओगे और कुछ भी तुम्हारे जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं होगा मेरे अतिरिक्त, तो फिर क्या होगा? उनको तेषाम अहम् समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, फिर मैं उनको मृत्यु संसार सागर से स्वयं आकर उभारूंगा। भवामि न चिरात् पार्थ, कुछ भी देर नहीं लगाऊंगा। मय्यावेशित चेतसा, जिनका चित सदैव मुझ में आश्रित होता है, मैं उनसे दूर जाता ही नहीं हूँ। तो उनके लिए तो मैं स्वयं आऊंगा उनको पार करने के लिए। बाकी जो दूसरे हैं, यानी जो ज्ञानी हैं, जो मुझ में चित नहीं लगाते, मुझसे प्रेम नहीं करते, अनन्य योग मेरे साथ नहीं जोड़ते हैं, तो फिर वो खुद से मेहनत करें। कभी न कभी बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कोई न कोई ऐसा दिन आएगा वो ज्ञानी भी मुझे प्रबद्यन्ते करेंगे, शरण में आएंगे और बोलेंगे वासुदेव सर्वम इति। लेकिन आगे भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ये जो स्टेज है जिसमें आपको मेरी संपूर्ण कृपा मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्लोक नंबर 8 से लेकर श्लोक नंबर 11 तक भगवान ने भक्ति के स्तर बताए। सबसे पहले क्या बताया? मय्यैव मनम् आदत्स्व मयि बुद्धिम् निवेशस, मन को मुझ में आविष्ट कर दो। मन जो है वो मुझ में स्थिर हो जाए, बुद्धि जो है वो मुझ में निवेशस, मुझ में लग जाए। और इस तरह से निवसिष्यसि मय्येव, जब इस तरह से तुम मेरे अंदर निवास करोगे, मय्येव केवल मेरे विषय में ही विचार करोगे, और इस प्रकार निस्संदेह क्या होगा? अतः ऊर्ध्वम न संशय, तुम ऊपर उठोगे, फिर तुम्हें नीचे गिरने की गिरने का चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पूरा का पूरा और किसी की चिंता नहीं कर रहा है, सिर्फ मन और बुद्धि मुझ में टिके हुए हैं। तो फिर तो बस तुम समझो एकदम हाईएस्ट, अतः ऊर्ध्वम न संशय, फिर तुम ऊर्ध्वम बेशक तुम ऊपर तक आओगे। लेकिन अगर सबका तो मन नहीं लगता भगवान में, इस तरह से मन भगवान के अंदर टिक जाए, बुद्धि भगवान के अंदर निवेशित हो जाए, ऐसा सबके लिए इजी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अतः चित्तम समाधातुम न शक्नोपि महेश्वरम। अतः चित्तम, ये जो तुम्हारा चित्त है ना, जो अलग अलग चीजों के चित्र निकाल के अपने अंदर समोह करके रखता है, तो वो चित्र वो जो चित्त है उसमें मेरे लिए जगह नहीं बचती। तो फिर क्या होता है? मेरा विचार जो है वो कंटिन्यू चलता नहीं है, अलग अलग वस्तुओं और व्यक्तियों का विचार चलता। अगर ऐसा भी है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोपि, अगर ऐसा उसके लिए संभव नहीं है कि वो चित्त को मुझ में एकाग्र करे, तो मई इस तरह मुझ में स्थिर करे, तो फिर वो क्या करे? अभ्यास योगे न ततो माम इच्छाम तुम धनंजय, तो फिर वो अभ्यास योग करे। यानी गुरु ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं कि 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है, और इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना है, विग्रह सेवा करनी है, भगवान को प्रसाद अर्पण करके भोग खाना है, तो माना ये सब वो सब ये यम और नियम करें इस तरह से। और उसके बाद माम इच्छा तुम, फिर उसके साथ ये इच्छा भी करें कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी, भले अभी मेरे मन में बहुत से विचार आते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, तो इस तरह से उसको सिद्धि मिलेगी धीरे धीरे। लेकिन अगर उसके लिए ये भी संभव नहीं है कि वो सारे अभ्यास करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, चैंटिंग करे, नियम को फॉलो करे, इसके अलावा श्रवण करे, शीघ्र सेवा, ये सब सबके लिए संभव नहीं है, तो फिर क्या करे? अभ्यास अभ्यास समर्थोसी मत कर्मो परमो भव। अगर वो अभ्यास करने के लिए भी असमर्थ है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, तो मत कर्मो वरमो भव, मेरे लिए कर्म करे, क्योंकि मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नोति। अगर तुम अगर वो मेरे लिए कर्म करेगा तो फिर क्या होगा, इस तरह से भी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। और आज भगवान कहते हैं मैं भी पैसे, अभी मेरे लिए कर्म हमने बहुत ही सुंदर रीति से पढ़ा कि भगवान के लिए कर्म कैसे करें, कि जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको भी धन की जरूरत होती है, उनको मैनेजमेंट की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, योजना की जरूरत होती है, या संगठन कुछ भी, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, अभी जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं उनको प्रसाद के लिए दान की जरूरत होती है, और इसके अतिरिक्त उनको सेवा के लिए भी और मतलब चीजों की जरूरत होती है, किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो अगर खुद से भक्ति नहीं कर रहा है तो फिर क्या करें, उनको सहूलतें प्रोवाइड करें, उनको वो वस्तुएं प्रोवाइड करें कि वो जो भक्ति कर रहे हैं वो आसानी से भक्ति कर सकें। वो खुद नहीं कर सक रहा है लेकिन उनको हेल्प प्रदान करें। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कितने उदार हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर रहने दो, फिर वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता, उसे मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान आपको किसी भी स्तर में बहिष्कृत नहीं करते, आपको कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको अपनाने से इनकार करें। भगवान बोलते हैं तुम किस स्तर पे हो, तुम कौन से स्टेप पर हो, जैसे सीढ़ी होती है ना, अब भगवान तो टॉप फ्लोर पे है ही है, लेकिन अगर आप अभी तक सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट भी नहीं हुए हो तो भी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आप पहले स्टेप पर पांव तो रखो, आप ऊपर आने का प्रयत्न तो करो, मैं ही खड़ा हूं ना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अगर एक स्टेप पर बढ़ोगे तो मैं 10 कदम नीचे आ जाऊंगा, तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा, तुम कोशिश तो करो मेरे पास आने की, तुम इच्छा तो रखो कि मुझे संसार नहीं कृष्ण चाहिए, फिर तुम ऐसी कोशिश भी अगर करते हो तो भी उस कोशिश को देखकर मैं तुम्हें अपनी कृपा प्रदान करूंगा। तो भगवान कहते हैं अतः तद अप्य शक्तों से, अगर उसके लिए अशक्तों से यानी उसमें अंदर ये सब शक्ति भी नहीं है कि वो मेरे इन कार्यों को करने वाले मेरे भक्तों की सहायता करे, यानी अगर उसके अंदर इस तरह का भी, कुछ लोग होते हैं नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भक्तों की सहायता नहीं कर सकते हैं, उनको घर में इतनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि हो सकता है कोई व्यक्ति सामाजिक पारिवारिक या धार्मिक कारणों या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखाने में असक्षम हो। तो हो सकता है ना कि किसी के लिए संभव ही ना हो कि वो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करे या कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने वालों की सहायता करे, वो भी यदि उसके लिए संभव नहीं है तो क्या करे, सर्व कर्म फल त्यागम। तो वो इतना सोचे कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका फल मैं अवश्य किसी पुण्य कर्म कार्य में लगाऊंगा, पुण्य कर्म मतलब सर्व कर्म। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग अपने कर्मों के फलों को केवल भोगना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जरा सा भी अगर कार्य करें ना तो उसके लिए हमें एप्रिशिएशन मिले, उसके लिए हमें रिजल्ट मिले, उसका फल हमें मिले, और बहुत इंस्टेंट हम चाहते हैं कि हमने ये कार्य किया तो हमें भगवान को जल्दी से जल्दी फल देना चाहिए, मैं कितना अच्छा इवन। और फिर कभी कभी क्या करते हैं, आजकल मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में जाने का एक ही मकसद, क्या मकसद है कि भगवान मैं तुम्हारे मंदिर में आ गया, अभी मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, ऐसा करो कि तुम, मैं ना एक भक्त था, भक्त बस ऐसे ही था जिसको भक्त पता नहीं बोले या ना बोले, उसने बोला भगवान मुझे ना अगर तुम 1 लाख का अगर मुझे लॉटरी लगेगा तो उसमें से आधा मैं आपको दूंगा, मुझे 1 लाख की लॉटरी चाहिए तो मुझे वो लग जाएगा तो मैं उसमें से आपको आधा दूंगा। तो फिर हुआ क्या, उसको लॉटरी तो लगी
मगर है ना 50,000 के लगे। तो भगवान को जाके 25,000 देने की बजाय भगवान को बोले, भगवान तुम तो बड़े चालाक निकले, अपना हिस्सा पहले ही अपने पास रख दिया। मतलब भगवान के साथ चीटिंग करते हैं, भगवान को बोलते हैं कि मैं आपको दूंगा, फिर भी भगवान के साथ ऐसा करते हैं। और भगवान को फिर वो सोचते हैं भगवान को क्या जरूरत है ना, भगवान का बस भंडारा कर दिया 5-10,000 रुपए का, उनको आधे की क्या जरूरत, पहले बोल के आएंगे। तीन चोर थे तो बोले कि हम लोग है ना बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है ना वो चोरी करते हैं मंदिर के, मतलब वो क्या थे, चोर नहीं थे असल में, मंदिर की वर्कर होते ना कुछ ऐसे थे, और वो सबसे डोनेशन लेने जाते थे, वो नाम पर भगवान के डोनेशन लेते, भाई हम इस मंदिर से है ना बिलोंग करते हैं, आप हमें डोनेशन दो। तो फिर वो है ना बहुत सारा पैसा जब जमा करके आते थे, तो एक दिन वो तीनों वो जो मंदिर के डोनेशन जमा करने जाते थे ना, वो तीनों एक साथ बैठे, तो एक ने दूसरे से पूछा तुम्हें तो बहुत डोनेशन मिलता है, बहुत दान मिलता है, तो तुम क्या वो सारा का सारा भगवान को ही देते हो? उसने कहा नहीं, मैंने एक दायरा बनाया है, दायरा मतलब एक ऐसा दायरा है कि उस मैं पैसे क्या करता हूँ, ऐसे ऊपर जो भी पैसे आते हैं मेरे पास दान के, वो मैं ऐसे ऊपर फेंकता हूँ, तो जो दायरे के अंदर आ गए वो मैं भगवान को देता हूँ, और बाकी जो दायरे के बाहर आए वो तो मैं खुद रख देता हूँ। तो बोला अच्छा ऐसा तुमने दायरा कितना बनाया? तो बोला जैसे मेरी अंगूठी है ना, उसके अंगूठी का एक गोला नहीं, अंगूठी को अगर रखते हैं फर्श पे तो गोल बना सकते ना सर्कल, बोला उससे बना है। मतलब कितना भगवान को चीट कर रहा है, अभी उसके अंदर कितना जाएगा है ना, एक सिक्का भी उसके अंदर पूरा नहीं जाएगा, बोलेगा बाहर निकला भाई। तो दूसरे ने कहा तुम बहुत गलत करते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बोला तुम क्या करते हो फिर? बोला मैं तो भगवान को कहता हूँ जो दायरे के अंदर आ गया वो मेरा है, बाकी सब तुम्हारा है। बोला अच्छा ऐसा, तुम्हारा दायरा कितना बड़ा है? बोला बस मेरा घर, ये मेरा घर ही तो मेरा दायरा है, जो मैं ऊपर फेंकता हूँ जो धन मेरे घर में गिरे वो मेरा, दूसरा भगवान का। तो तीसरे ने बोला तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, अब जाहिर सी बात है तुम घर में आके उछालोगे तो फिर घर में ही गिरेगा ना, तो तुम भगवान के साथ इस तरह चीट कर रहे हो। तो तीसरे को बोला तो फिर तुम कैसे करते हो? बोला मैं तो भगवान के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होने दे सकता। तो बोले तुम करते कैसे हो? बोला मैं देखो पैसे जो भी दान के मिलते हैं मैं ऊपर फेंकता हूँ, भगवान ऊपर रहते ना, भगवान को मैं बोलता हूँ आपको जितने चाहिए उतने रखो, बाकी वापस नीचे फेंक देना। तो भगवान जितने नीचे फेंकता उतने में रख देता। मतलब कहने का यहाँ पर ये कहने का मतलब क्या है कि आज हम हर एक वस्तु के भोक्ता स्वयं बनना चाहते, दूसरों को देना नहीं चाहते, मतलब अपने धन से अपनी कमाई से कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि उससे हमें लाभ, बस हम हमेशा चाहते हैं जो भी हमारे पास है उस सब का लाभ जो है वो हमें मिलना चाहिए और किसी को नहीं। तो फिर लोग जो है ना वो पुण्य कर्म करना बंद कर दिए हैं। लेकिन अगर जितना हम बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, जितना उनके पास धन होता है, वो चाहे तो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए भी कार्य कर सकते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करने में समर्थ नहीं है, मतलब भक्ति करने में समर्थ नहीं और भक्तों की सहायता करने में भी समर्थ नहीं, तो भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, तुम एटलीस्ट अपने कर्मों के फलों को तो त्यागो। तो मानो अर्जुन बोलेगा कि कर्मों के फलों को त्यागो, कर्मों के फल के ज्ञान के कारण ही तो कोई कर्म करता है ना। आप कर्म क्यों कर रहे हो? कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हो तो आप इसीलिए कर रहे हो कि इसकी बदली में मुझे ये प्राप्त होगा है ना। अगर आप कर्म आज सुबह को खाना बनाते हो, किचन में काम कर रहे हो, आपको पता है मैं काम कर रहा हूँ तो उसकी बदली में क्या होगा, मुझे प्रसाद मिलेगा उसको खाने के लिए। अगर आप ऑफिस जाते हो पूरा दिन यदि आप काम कर रहे हो ऑफिस में, तो आपको अगर ऐसा कहा जाए कि इसका फल त्याग दो तो फिर क्या आप महीने की सैलरी लेना बंद कर दोगे? मतलब कर्म आप क्यों कर रहे हो? ताकि मुझे इसका फल प्राप्त हो। लेकिन भगवान कहते हैं क्या कि अगर आप जो है मेरे लिए कार्य नहीं कर सकते हो तो क्या करो, सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कार्यों के फल
त्याग दो। और ततः गुरु, इस तरह से अगर आप करोगे यदात्मवान, तो फिर क्या होगा, आप आत्म साक्षात्कार के का प्रयत्न कर सकोगे। क्योंकि हम ये जो कर्म कर रहे हैं ना, वो शरीर के द्वारा कर रहे हैं, है ना। और फल भुगतना भी किसको है, शरीर को है। अगर धन प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा, कुछ भी प्राप्त होगा, वो किसके लिए, शरीर के लिए प्राप्त होगा ना। तो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन में आते हो और आपको ये रियलाइज होता है कि मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, अभी इस शरीर के द्वारा हम जो कार्य करते हैं ना, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है कि जैसे आप कर्म कर रहे होते हो, तो ये ऐसे है जैसे पहले जमाने में नहीं टैप रिकॉर्डर होता था, उसके अंदर एक कैसेट लगता था, और कैसेट के अंदर क्या होता था, एक साइड से वो जो रील है वो रिड्यूस होती जाती थी और दूसरी साइड से वो फोल्ड अप होती जाती थी। तो एक साइड से वो कम होती जा रही थी और दूसरे साइड से बढ़ती जा रही थी। उसी तरह से भगवान हमें कर्मों के फलों को त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेन मकसद क्या है कि अगर हमारे कर्मों का एक भी हिसाब किताब बाकी रह गया, तो फिर हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें अपने इस कर्मों के हिसाब किताब को खत्म करना पड़ेगा। तो फिर क्या है, जैसे मैं अभी उसकी टेप रिकॉर्डर की एग्जांपल दे रही थी, तो उसमें क्या, अगर वो फ्रीज हो जाए, मतलब या तो वो कम होता जाए, उस तरफ से भी किस एक कम होता जाए, लेकिन दूसरी तरफ से बढ़े नहीं, और इस तरह से कम होते होते एक दिन खत्म हो जाएंगे, ऐसा होगा ना। लेकिन अगर वो दूसरी तरफ से बढ़ता जाएगा तो फिर क्या होगा, कैसेट खत्म होने के बाद आप दूसरा साइड लगाओगे, जिस तरह हमारे जीवन में होता है। हम क्या करते हैं, इस संसार में आते हैं और कर्म करते हैं। अब कर्म करने के टाइम पर क्या होता है कि कुछ तो हम नियत कर्म कर रहे होते हैं, यानी नियत कर्म जो कंपल्सरी करने होते हैं, और कुछ कर्म हम प्रारब्ध के कारण प्राप्त करते हैं। जैसे अगर पिछले जन्म में हमारा किसी के साथ संबंध होता है, या कुछ भी, मतलब पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब, अगर किसी ने मैंने किसी को थप्पड़ मारा, तो वो इस दूसरे जन्म में आकर मुझे मारेगा। इसी तरह मैंने किसी को दूसरा कष्ट दिया। अब भागवतम महापुराण में ऐसी अनेकों कथाएं हैं, बहुत सारी हैं, कि पिछले जन्म में किसी ने किसी के साथ कुछ किया उल्टा सीधा, तो फिर उसके लिए दूसरे, जैसे महाराजा चित्रकेतु, उनको जो पुत्र पैदा हुआ था इतनी मुश्किल के साथ, तो उनकी 1000 रानियों ने उसे जहर देकर मरवा दिया। अभी वो तो है ना मर गया, लेकिन वो क्यों मरा, माताएं है ना, वो भी एक तरह से देखा जाए तो माताओं ने क्यों मारा उसको, महाराजा चित्रकेतु के पुत्र को, क्योंकि पिछले जन्म में, बाद में भागवतम में कहा गया, पिछले जन्म में क्या होगा कि एक बहुत ही सुंदर, मतलब पिछले जन्म में हमने अच्छा कर्म किया होगा तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और वो अच्छा रिजल्ट जो है ना, वो भी बेड़ियां होता है, सोने की बेड़ियां होता है। तो हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि भले ही दूसरों को देखते हैं ना, अच्छा उसको जन्म मिला होता है, धन मिला होता है, अच्छा घर मिला होता है, हम भी वो अच्छा कार्य करके दिल में हम सोचते हैं कि उनको कितनी अच्छी जिंदगी मिली है, तो हमें भी ऐसी जिंदगी मिलनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, तो फिर वो सोचते हैं भले कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेड़ियां हैं तो क्या हुआ, है तो सोने की ना, हमें सोने की बेड़ियां पसंद है। आज इस संसार में 99% लोग क्या सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य करें, उसकी बदली में मुझे अच्छा पुण्य का फल मिलना चाहिए। बोलते नहीं, मुझे बेड़ियां चाहिए, सोने की बेड़ियां चाहिए। लेकिन भगवान हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सर्व कर्म फल त्यागम, अगर आप सारे कर्मों के फल त्यागोगे, यानी फल के अंदर आसक्ति नहीं रखोगे। हमारा इस संसार में फंसने का कारण केवल इतना है कि हम फलों के अंदर आसक्ति रखते हैं। और कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें क्या सिखाता है कि हम हर कार्य को ये सोच कर करें कि बस ये कार्य जो है वो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान ने ड्यूटी दी है तो मुझे ये कार्य करना है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कार्यों को छोड़ दो, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों को करो ही नहीं, कुछ करो ही नहीं। अकर्म भगवान, हालांकि अर्जुन जो है वो बार बार भगवान को बोलते थे कि मुझे ना युद्ध नहीं करना है, लेकिन भगवान उसको बोलते थे नहीं, आपको अपना नियत कर्म करना है, आपको करना है, लेकिन कैसे करना है वो भगवान पहले ही बता चुके। 2.47 भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार किस पे है? सिर्फ कर्म पर है। और फल मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भु, मैं ही तुम्हारे कर्मों के फल प्रदान करूंगा, इसलिए माते संगोस्त्व कर्मणि, इसलिए तुमको कर्म करना है। कभी भी ये नहीं सोचना कि तुम कर्म नहीं करोगे। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भले वो अगर डायरेक्ट से वो नहीं कर सकता है, अपना राष्ट्रीय या सामाजिक या पारिवारिक कोई प्रॉब्लम है, वो भक्तों का साथ भी नहीं दे सकता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, समुदाय सेवा करना चाहिए, राष्ट्रीय सेवा करना चाहिए, देश के लिए उत्सर्ग और आदि जो कार्य होते हैं उनको स्वीकार किए जा सकते हैं। तो अगर इस तरह से अच्छे अच्छे कार्य करेगा तो भी भगवान उससे प्रसन्न होंगे। ऐसा थोड़े है कि भगवान खाली उसी से प्रसन्न होते हैं जो भगवान के सारा दिन माला उठाते हैं। ये एक अलग बात है कि यहां से वो उठेगा, है ना। अब वो पहले स्टेप पे है, वो भगवत भक्ति तक नहीं आए, मन आदर्श वो पहली स्टेज है। वो भगवान ये सीरीज में बता रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, एटलीस्ट कुछ तो करो। तुम अच्छा मनुष्य बने हो, शास्त्र उठाओ, शास्त्र में देखो कि अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे तो तुमको अचरे आदि गच्छति, तो फिर भगवान को प्राप्त करने में तुम्हें देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में लगता ही नहीं है तो फिर कुछ तो अच्छा करो, मनुष्य बने हो तो मनुष्य जैसा कुछ तो काम करो। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि ठीक है, इस तरह से क्या होगा, एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि सुकृति होगी ना। तो इसलिए भगवान ने कहा ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म, कि जिसके पुण्य कर्म उदय होते हैं और अपराध खत्म हो जाते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते मां, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भजन करना शुरू करता है। तो भगवान इस तरह से धीरे 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 हमको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता रहे हैं कि हम कौन से स्टेप पर हैं और हमें किस कहां तक पहुंचना है। तो यहां तक भगवान ने बताया। अभी बारहवें श्लोक में भी भगवान इसी श्रृंखला का आखिरी जो श्लोक है वो बताएंगे, और उसके बाद भगवान हमें बताएंगे कि उन्हें कौन कौन से भक्त जो हैं वो प्रिय लगते हैं। तो आप सब साथ रहिएगा, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।